आज है 7 अगस्त दिन शुक्रवार। स्वागत है आपका नमस्कार भारत में। मैं हूं सुशीला सिंह। जम्मू में देर रात बसंतगढ़ इलाके में पुलिस चौकी पर हमला, 3 एसपीओ घायल। सरकार और एनएससीएनआईएम के बीच हुए समझौते का कांग्रेस ने किया विरोध।
And this is a multi-ethnic group, so we have need to listen the voice of the cookie.
भ्रष्टाचार मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत की अग्रिम जमानत याचिका पर होगी आज सुनवाई, और सरकार ने बनाए कावड़ियों के लिए नए नियम।
हम चाहते हैं कि वो हेलमेट पहने ताकि उनकी जान को कोई खतरा ना हो, ट्रैफिक नियमों का भी पालन हो। म्यूजिक सिस्टम जो डीजे वगैरह बजाते हैं ये, तो उसकी वॉल्यूम नियंत्रण में रखें।
लेकिन पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
बीबीसी समाचार समीर आत्मज मिश्र से। जम्मू कश्मीर में उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में एक पुलिस चौकी पर संदिग्ध चरमपंथी हमला हुआ है, जिसमें 2 एसपीओ घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच देर रात तक मुठभेड़ जारी थी। बसंतगढ़ काफी दुर्गम इलाका है और आगे जाकर यह दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले से जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक शक्तिशाली कार बम धमाके में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है और करीब 100 लोग घायल हो गए हैं। काबुल के पुलिस प्रमुख अब्दुल रहमान रहीमी ने बीबीसी को बताया कि एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरे एक ट्रक को एक सैन्य ठिकाने के पास उड़ा दिया। पुलिस प्रमुख ने बताया कि मरने वालों में ज्यादातर औरतें और बच्चे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। फ्रांस हिंद महासागर में री यूनियन द्वीप के पास एक खोजी जहाज, हेलीकॉप्टर और कुछ नावें भेज रहा है ताकि मलेशिया के लापता विमान MH370 के मलबों का पता लगाया जा सके। पड़ोसी देशों में मॉरिशस और मेडागास्कर में अधिकारियों से पहले ही अपने तटों का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया जा चुका है। इस बीच मलेशिया के परिवहन मंत्री लियो त्योंग लाई ने कहा कि रीयूनियन द्वीप पर मिले जहाज के पंख का रंग MH370 के रिकॉर्ड से मेल खाता है।
I also dispatched another team to La Reunion Island.
मैंने एक अन्य टीम को रीयूनियन द्वीप पर भेजा है और उससे कहा है कि वो वहाँ से और मलबा ढूंढने की कोशिश करें जहाँ से विमान का पंख मिला था। अभी कई ऐसे सामान वहाँ मिल सकते हैं जो कि लापता विमान के मलबे की खोज में मददगार हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैं ये नहीं कह सकता कि ये MH370 के ही हैं, वैसे ही इन सामानों के भी विधिवत परीक्षण की ज़रूरत है। मलेशिया के परिवहन मंत्री के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पाकिस्तान सेना का कहना है कि देश के उत्तर पश्चिम इलाके में उसका एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसमें कम से कम 12 लोग मारे गए हैं। सेना का कहना है कि यह हेलीकॉप्टर डॉक्टरों और पैरामेडिकल कर्मचारी मौजूद थे। उनके मुताबिक हेलीकॉप्टर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के पहाड़ी इलाके में गिरा है। सेना के एक प्रवक्ता ने जानकारी दी कि यह दुर्घटना तकनीकी खामी की वजह से हुई है। अमरीका में रिपब्लिकन पार्टी के 10 प्रमुख संभावित उम्मीदवार अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए पहली बहस की तैयारी कर रहे हैं। टेलीविजन पर होने वाली इस बहस को ओहियो में फॉक्स न्यूज़ मॉडरेट करेगा। जानकारों ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी नेपाल और उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से में फिर भूकंप आ सकता है। नए आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल महीने में आए भूकंप के दौरान ज़मीन के अंदर तनाव से जो ऊर्जा निकली थी वो पूरी तरह से अपना प्रभाव नहीं दिखा पाई थी। शोधकर्ताओं का कहना है कि इस इलाके की भूवैज्ञानिक स्थितियों पर लगातार नज़र रखने की ज़रूरत है। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत लाइव रेडियो bbchindi.com और अपने मोबाइल पर सुशीला सिंह के साथ। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जम्मू से, और जैसा कि आपने समाचारों में भी सुना, देर रात जम्मू कश्मीर के दूरदराज के बसंतगढ़ इलाके की संघ पुलिस चौकी पर संदिग्ध चरमपंथी हमला हुआ। इस चौकी में 3 एसपी मौजूद थे और इस मुठभेड़ में 3 घायल हो गए। वहीं चरमपंथियों की संख्या 2 से 3 बताई जा रही है। मैंने बस चंद मिनट पहले जम्मू फोन कर स्थानीय पत्रकार बीनू जोशी से पूरी जानकारी मांगी।
देखिए जी, जो आप बता रहे हैं, रात को 9:15 करीब ये हमला हुआ था और ये काफी दूर दराज इलाका है, पहाड़ी दुर्गम इलाका है जिन्हें जहाँ घने जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ पे एक छोटी सी पुलिस चौकी है, संघ पुलिस चौकी, वहाँ पे उस समय सिर्फ 3 स्पेशल पुलिस ऑफिसर जो नियमित रूप से पुलिस में भर्ती नहीं होते लेकिन चरमपंथियों के साथ मुकाबला करने के लिए पुलिस की सहायता करते हैं, ये 3 लोग वहाँ पे मौजूद थे। और एकदम से जब चरमपंथियों द्वारा हमला हो गया बाहर से पुलिस चौकी के ऊपर, तो इन लोगों ने फायर किया, लेकिन इनके पास काफी पुराने हथियार होते हैं जबकि चरमपंथियों के पास उस वक्त ऑटोमेटिक राइफल्स वगैरह थी, तो इन्होंने मुकाबला तो किया लेकिन एक एक करके ये 3 घायल हो गए। और जो वहाँ के डिप्टी कमिश्नर है उधमपुर के, उन्होंने हमें बताया कि ये हम कोई मुठभेड़ जो है 12:30 तक चलती रही, गोलीबारी की आवाजें आती रही जब तक कि क्विक रिएक्शन टीम भी वहां पहुंच चुकी थी, तो उसके बाद गोलीबारी तो थम गई लेकिन इन चरमपंथियों का अभी तक कुछ पता नहीं चला। तो इस संभावना से भी कोई इनकार नहीं कर रहा कि शायद रात के अंधेरे को देखते हुए वहां से वो भाग के निकल चुके हों। तो जो इंजर्ड था एक गुल मोहम्मद, उसके बेटे ने हमें टेलीफोन पर बताया कि उस समय उनके पेट में 2 गोलियां लगी हुई थी लेकिन कोई चिकित्सा का कोई वहां पे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी।
जी, इससे पहले भी उधमपुर में ही हमला हुआ था, ये देखा जा रहा है कि ऐसे हमले बढ़ रहे हैं।
देखिए, ये तो एक तो पहले इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि ये हमले बढ़ेंगे, और ये भी था कि जो कश्मीर घाटी के साउथ में जम्मू रीजन पड़ता है हिंदू बहुल वाला, यहाँ पे होंगे ये हमले। और इनमें 3-4 वजह ये थी कि एक तो अमरनाथ यात्रा चल रही है, 15 अगस्त के आसपास भी ऐसी जो चीजें होती हैं जो चरमपंथी हमले, इनकी संभावना बढ़ जाती है। हालांकि कड़ी सुरक्षा रहती है सभी तरफ, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल हो या इंटरनेशनल बॉर्डर हो, उन सब पे सुरक्षा तो कड़ी होती है, लेकिन फिर भी इस बार ये 2 हमले हो गए, जो बुधवार को BSF की एक कॉन्वाई पे हुआ था जिसमें 2 BSF वाले मारे गए थे, एक मिलिटेंट भी मारा गया था और एक पकड़ा गया था। तो उसके अगले दिन ही कल गुरुवार रात को ये बसंतगढ़ में जो संघ पुलिस चौकी पे हमला हो गया, जिसमें ये है कि 3 पुलिसकर्मी घायल ही हुए हैं, बाकी लेकिन अभी चरमपंथी जिनकी संख्या 2 से 3 बताई जाती है उनके बारे में कुछ भी समाचार नहीं है।
तो जम्मू के बसंतगढ़ में चरमपंथी हमला, 3 SPO घायल, ये थे, ये थी जम्मू से बीनू जोशी। उधर भारत प्रशासित राज्य कश्मीर के पुलवामा जिले में बीती शाम सुरक्षा बलों और चरमपंथियों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हुई। काकापोड़ा में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक चरमपंथी मारा गया है। इसे एक दिन पहले भी वहां मुठभेड़ हुई थी जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से एक चरमपंथी को पकड़ भी लिया गया था। हमारे सहयोगी निखिल रंजन ने स्थानीय पत्रकार रियाज मसरूर से इन सब के बारे में पूरी जानकारी मांगी।
ये पुलवामा के काकपोरा एरिया में हुआ है जो श्रीनगर से बिल्कुल निकट है, कोई 30 किलोमीटर से भी कम का डिस्टेंस है जहां ये हुआ है। पुलिस का कहना है कि उन्हें खुफिया इत्तला मिली थी कि चरमपंथी कहीं पे छुपे बैठे हैं, तो उन्होंने एक इलाके का घेरा किया। और पुलिस का कहना है कि पुलिस के साथ साथ सेना और CRPF भी थी, और उस इलाके का जब घेरा किया गया तो एनकाउंटर शुरू हो गया। उसका कहना है कि 2 मिलिटेंट्स जो है वो छुपे बैठे थे उस इलाके में, तो फायरिंग के दौरान जो है एक मिलिटेंट है वो मारा गया, और उसके बाद लोगों में काफी क्रोध देखा गया, काफी युवकों ने वहां पे प्रदर्शन किए, जिसके बाद पुलिस ने हल्का सा लाठी चार्ज भी किया। उसके बाद हमें ये बताया गया कि एनकाउंटर खत्म हो गया है, लेकिन 1-2 घंटे बाद दोबारा फायरिंग की पुष्टि कर सुरक्षा कर्मियों ने, उन्होंने कहा कि दोबारा फायरिंग हो रही है। तो देर रात तक जो है तलाशी अभियान काकपोरा और उसके जो इर्द गिर्द के जितने भी क्षेत्र हैं या इलाके हैं उनमें तलाशी का अभियान जारी रहा कल देर रात तक।
क्या ऐसी आशंका है कि कुछ और चरमपंथी छिपे हो सकते हैं?
ये तो पैटर्न रहा है, कभी होता भी है ऐसा और कभी होता भी नहीं है, और वो जंगलों की तरफ जाते हैं, क्योंकि जिस एरिया में ये हुआ है ये बिल्कुल त्राल और पुलवामा के निकटतम इलाके हैं और जंगलों की तरफ रास्ता भी है, वो जा सकते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो चरमपंथी मारा गया है वो लोकल है, यानी वहीं का है, उसका नाम तालिब अहमद शाह है और उसने फिजिकल एजुकेशन में मास्टर्स डिग्री हासिल की थी। तो जब वहां पे फ्यूनरल हो रहा था तो उनकी मां ने मीडिया को बताया कि उसको 2010 के बाद से उसको पथराव के आरोप में पुलिस तंग कर रही थी और उसकी वजह से वो बाद में लश्कर-ए-तैयबा के साथ जा मिला।
एक दिन पहले जो मुठभेड़ हुई थी और जिसके बाद एक चरमपंथी को जिंदा पकड़ने का भी दावा किया जा रहा है, उसके बारे में क्या जानकारी मिलकर के आई है आज सामने?
देखिए, जैसे पहले ही खबर आ चुकी है कि इसमें जो फर्दर प्रोब होना है वो नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी NIA के जरिए से होना है, तो NIA की टीम जो है वो पहले तो उधमपुर पहुंची और बाद में जम्मू में उनकी मीटिंग हुई यहाँ के सुरक्षा पुलिस और खुफिया इदारों के साथ। तो एनआईए ने एक लीड दिया है पुलिस को, जिसके बाद पुलिस ने ये बताया कि वो अब दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले के एक ट्रक ड्राइवर की तलाश कर रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि उसी ट्रक ड्राइवर ने दो मिलिटेंट्स को लिफ्ट दिया था श्रीनगर से काजीगुंड और काजीगुंड के बाद वहां नारसू इलाके में जहां वो ये अटैक प्लान किया गया था। तो पुलिस का कहना है कि जो गिरफ्तार किया गया चरमपंथी, जिसने तीन नाम अपने बताए हैं, पुलिस के मुताबिक पुलिस सूत्रों से कई नाम आ रहे हैं, एक तो उस्मान आया था पहले, बाद में कासिम और अब नवीद नाम सामने आ रहा है। तो पुलिस का कहना है कि उसने स्पष्ट किया है कि वो कोई एक तीन महीने पहले कुपवाड़ा में लाइन ऑफ कंट्रोल के जरिए से घुसपैठ हुई थी और कश्मीर में वो सक्रिय थे और उसके बाद उन्होंने ये नेशनल हाईवे पे जो है अटैक का प्लान किया था।
श्रीनगर में मौजूद बीबीसी संवाददाता रियाज मसरूर से बात कर रहे थे निखिल रंजन। गोवा के लुईस बर्जर भ्रष्टाचार मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी है। इससे पहले कल रात पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री चर्चिल ललिमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। क्या है ये पूरा मामला और अब तक इसकी जांच में क्या कुछ हुआ है, पूरा ब्यौरा सुना रहे हैं संदीप राय।
लुईस बर्जर रिश्वत कांड में गिरफ्तार गोवा के पूर्व मंत्री चर्चिल ललिमाओ 4 दिन के पुलिस रिमांड पर हैं। गोवा पुलिस की अपराध शाखा ने लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी के पूर्व मंत्री ललिमाओ को बुधवार की रात उनके घर से हिरासत में लिया था। 2012 में गोवा की सत्ता पर भाजपा के काबिज होने के बाद भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में पहली बार बड़े राजनेताओं और अधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है। यह मामला अमरीका के न्यू जर्सी की कंपनी लुईस बर्जर से जुड़ा है। कंपनी ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी JICA से फंडिंग के तहत एक जल परियोजना का ठेका हासिल करने के लिए गोवा के किसी मंत्री को कथित रूप से रिश्वत दी थी। लुईस बर्जर ने माना था कि उसने गोवा परियोजना से जुड़ा ठेका हासिल करने के लिए 9,76,00,000 डॉलर की रिश्वत दी थी। राज्य की बीजेपी सरकार पहले इस मामले में CBI जांच चाहती थी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री और अब रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मिले संकेतों के बाद सरकार ने जाँच को क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया है। बर्जर ने रिश्वत कांड में शामिल भारतीय राजनेताओं और अधिकारियों के नाम उजागर नहीं किए हैं, लेकिन अमरीकी न्याय विभाग ने कहा है कि मांगे जाने पर वो इसकी जानकारी दे देगी। क्राइम ब्रांच के अधिकारी लुईस बर्जर के भारत में काम कर रहे 2 अधिकारियों को भी गोवा मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने में सफल रहे। इन अधिकारियों ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया कि रिश्वत पीडब्ल्यूडी के पूर्व मुख्य अभियंता वात्सुंदर के साथ पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत और पूर्व मंत्री ललिमाओ को दी गई थी। वात्सुंदर को भाजपा सरकार ने 26 जुलाई को निलंबित कर दिया था। 6 दिन तक पुलिस हिरासत में रखने के बाद अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इस दौरान वात्सुंदर ने 4 अगस्त को अग्रिम जमानत की अपनी अर्जी वापस ले ली। इसके बाद कामत ने अगले ही दिन गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी दी है। कामत की अग्रिम जमानत की याचिका पर 7 अगस्त यानी आज ही सुनवाई होनी है और इसके बाद ही साफ हो सकेगा कि गोवा पुलिस उनको गिरफ्तार करेगी या नहीं। इस मामले में पुलिस लुईस बर्जर भारत के वाइस प्रेसिडेंट सत्यकाम मोहंती से भी पूछताछ कर रही है। मोहंती को 3 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।
ये थे संदीप राय। पिछले दिनों भारत सरकार और नगा विद्रोही गुट NSCNIM के बीच एक ऐतिहासिक समझौते का ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समझौते को नगा समुदाय के लिए विकास की नई इबारत बताया और कहा कि इससे नगा लोगों के साथ चली आ रही 6 दशकों से समस्या का अंत हो जाएगा। समझौते में क्या तय हुआ अभी ये बात सामने नहीं आई है, लेकिन विपक्षी दल कांग्रेस समेत पूर्वोत्तर में नागालैंड के पड़ोसी राज्यों में इस पर विरोध और आशंकाएं जताई जा रही हैं। दिल्ली से निखिल रंजन की ये रिपोर्ट।
इसी महीने जब दिल्ली में प्रधानमंत्री के आवास पर नगा विद्रोही गुट NSCNIM के नेताओं और केंद्र सरकार के बीच समझौते का ऐलान हुआ तो उत्तर पूर्व भारत के साथ ही देश भर में एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। ज्यादातर लोगों को लगा कि शायद अब 6 दशकों से चली आ रही असहमति और अशांति का दौर खत्म होगा, लेकिन गुरुवार को केंद्र में विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी की प्रमुख सोनिया गांधी ने कहा कि इस समझौते के लिए नागालैंड के पड़ोसी राज्यों से विचार विमर्श नहीं किया गया है। नागालैंड में तो NDA के घटक दल की सरकार है, लेकिन पड़ोस के जिन 3 राज्यों में नगा आबादी रहती है वहां कांग्रेस का शासन है। ये राज्य हैं मणिपुर, असम और अरुणाचल प्रदेश। पड़ोसी राज्यों की सहमति की इस मामले में कैसी भूमिका है, ये इस बात से समझी जा सकती है कि नगा आबादी का बड़ा हिस्सा नागालैंड से बाहर इन्हीं राज्यों में रहता है। कांग्रेस के आरोपों के जवाब में बीजेपी ने कुछ दस्तावेज दिखाए और कहा कि इस मुद्दे पर विपक्ष राजनीति कर रहा है। बीजेपी प्रवक्ता निर्मला सीतारमन,
हियर टू द कांग्रेस पार्टी अनफॉर्चुनेटली डस नॉट हैव द स्टेट्समैनशिप टू सी।
ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पा रही है कि समझौते से क्या निकल कर आया है। पहले उनके मुख्यमंत्रियों ने इसका स्वागत किया, अब उन्हें सलाह दी जा रही है, समझाया जा रहा है कि वो अपने शब्द वापस लें।
कांग्रेस और बीजेपी की आपसी खींचतान तो अपनी जगह है, लेकिन समझौता किन शर्तों पर हुआ है और इसे किस तरह से लागू किया जाएगा, इसे लेकर उत्तर पूर्व में स्थानीय लोग भी आशंकित हैं। मणिपुर में समाज शास्त्री धनवीर लाइश्राम,
द स्टेक होल्डर इज नॉट ओनली द नगा पीपल एंड द नगा सिविल सोसाइटी।
इस मामले में सिर्फ नगा लोग ही नहीं हैं, इसमें सरकार और दूसरे लोग भी हैं, दूसरी कई जातियों के लोग हैं, लेकिन बीजेपी ने मणिपुर के लोगों और सरकार से बिना विचार विमर्श किए और उन्हें कोई जानकारी दिए बगैर ही इस ऐतिहासिक समझौते को अंजाम दिया है।
समझौते के समय उम्मीद से भरा एनएससीएन आईएम भी अब खुलकर कुछ कहने से बच रहा है। संगठन के एक बड़े नेता ने एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में कहा कि अभी तो सिर्फ समझौते की प्रस्तावना ही तैयार हुई है और आगे का रास्ता लंबा और पेचीदा है। मानवाधिकार कार्यकर्ता और पेशे से वकील नंदिता हक्सर इस मुद्दे में दिलचस्पी दिखाती रही हैं। उन्होंने बीबीसी से कहा,
हर अकॉर्ड का भविष्य कोई अभी तक जो हुआ है कोई अच्छा नहीं हुआ है। अगर आप देखिए पहले नागास का था 16-point agreement, उसके बाद नागालैंड बना, अब देखा गया कि अधिकतर जितने नागास हैं वो नागालैंड स्टेट के बाहर रहते हैं। फिर 75 में अकॉर्ड हुआ, उसको दो एक हफ्ते के अंदर अंदर यही एनएससीएन ने कंडेम किया कि ये अकॉर्ड बिट्रेयल है। अगर इसका इतिहास देखें अकॉर्ड्स का, तो इसका लगता नहीं है कि ये कोई अलग हो सकता है, लेकिन आशा तो हमेशा होती है, उम्मीद तो है कि कुछ शायद अगर अलग हो जाए।
ये बात सबके जहन में है कि 1975 में शिलोंग समझौते के तुरंत बाद ही एनएससीएन ने इसका विरोध शुरू कर दिया था और तब इसे नगा लोगों के साथ धोखा बताया गया था। जानकार आशंका जता रहे हैं कि अब जब एनएससीएन खुद समझौते की मेज पर है तो विरोध का मोर्चा दूसरे गुट संभालेंगे। केंद्र सरकार ने इसाक मुइवा से तो बात की है, लेकिन दूसरे गुटों को भरोसे में लेने की अब तक कोई पहल सामने नहीं आई है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या सचमुच एनएससीएन लोगों का उतना बड़ा प्रतिनिधि है जितना कि इस समझौते के जरिए दिखाने की कोशिश की गई है। निखिल रंजन, बीबीसी दिल्ली।
तो सरकार और एनएससीएन आईएम के बीच हुए समझौते का कांग्रेस कर रही है विरोध। वहीं ये सवाल उठाया जा रहा है कि एनएससीएन आईएम का नगा समुदाय का कितना प्रतिनिधित्व करता है और उसके साथ हुए समझौते को क्या पूरे नगा समुदाय के साथ हुआ समझौता माना जा सकता है। निखिल रंजन ने ही सवाल पूछा पूर्वोत्तर मामलों के जानकार और स्थानीय पत्रकार सुबीर भौमिक से।
सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव सेटलमेंट नहीं है। दूसरी बात ये कि इसमें सिर्फ नागालैंड नहीं, जो नागालैंड के 3 पड़ोसी राज्य हैं, उन राज्यों के साथ बातचीत करना बहुत जरूरी था, उनको कॉन्फिडेंस में लेना बहुत जरूरी था, क्योंकि उनके जो नागा इलाके हैं उनके लिए भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज सोचा गया है इस अकॉर्ड में। क्या सोचा गया है ये तो अभी तक डिटेल किसी ने नहीं बताया है, और इसलिए ये प्रॉब्लम रह गया है कि इस अकॉर्ड में है क्या, ये किसी को ठीक से अभी तक नहीं पता। मुइवा का ये सबसे बड़ा डिमांड था कि ग्रेटर नागालैंड, यानी कि इंटीग्रेशन नागालैंड के साथ असम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर के नागा अधिकृत इलाकों का, वो तो नहीं हुआ है वो जाहिर है, बट उन इलाकों को नागालैंड के साथ बुनियादी तौर पर सांस्कृतिक तौर पर जोड़ने का कोई योजना जरूर है, और ये क्या है ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। इसको लेकर मणिपुर, असम और अरुणाचल में खास नाराजगी है, और इस नाराजगी का एक और वजह ये कि दिल्ली में भाजपा सरकार है जिनके साथ ये अकॉर्ड हुआ है, और ये जो 3 राज्य हैं, इन 3 राज्यों में कांग्रेस का सरकार है।
तो अभी आपको क्या लगता है कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए था? पहले खापलांग और दूसरे गुटों से बातचीत करनी चाहिए या पहले जो है इन राज्यों के साथ सहमति बनाने की कोशिश करनी चाहिए, आम लोगों की राय जानने की कोशिश करनी चाहिए?
देखिए, नागालैंड में जो सामाजिक संगठन है उन लोगों के साथ तो बातचीत हुआ है, नागा हो नागा जो वुमेन्स एसोसिएशन स्टूडेंट, इन लोगों के साथ बातचीत हुआ है, बट वो नागालैंड में हुआ है। मणिपुर, असम और अरुणाचल में जो सरकार है वो कांग्रेस के सरकार है, उनके साथ स्पष्टीकरण उनको देना बहुत जरूरी है कि इस अकॉर्ड में है क्या और ये उन राज्यों के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये है, अब खपलांग के साथ बातचीत करना मुश्किल है क्योंकि खपलांग बर्मा का रहने वाला है, वो बर्मा का नागरिक है, बट जो दूसरे गुट है एनएससीएन रिफॉर्मेशन जिसके लीडर वांगतिंग आओ और पी तिखाक और एक और ग्रुप है एनएससीएन खोले की तो भी के कहते हैं उसको, ये लोग भारतीय नागा छापामार नेता है। इन लोगों को इस अकॉर्ड में रखना बहुत जरूरी था अगर इस अकॉर्ड को सब राज्य में इम्प्लीमेंट करना है, नहीं तो ये हो जाता है इस तरह के पॉलिटिक्स में कि आपने एक गुट के साथ एक एग्रीमेंट किया तो दूसरे गुट जो है वो खास तौर से नाराज होकर हिंसात्मक गतिविधि बढ़ा देते हैं और उसमें ये जो मेन अकॉर्ड है उस पर एक बहुत बुरा असर पड़ता है।
एनएससीएन के एक बड़े नेता का बयान है कि ये अभी प्रीएम्बल है और अभी नेगोशिएशंस की शर्तें जो है होनी बाकी हैं, उस पर अभी बहुत चर्चा होनी है, तो बहुत मुमकिन है कि शायद उस दौरान और दूसरे संगठनों से भी बात की जाए। आपको नहीं लगता कि अभी बहुत जल्दबाजी होगा इसके बारे में कुछ इस तरह का कहना कि ये अभी बहुत अधूरा है?
नहीं, जल्दबाजी तो सरकार ने किया है ना, इससे पहले जितने इस तरह के अकॉर्ड हुए हैं वो अकॉर्ड कंप्लीट अकॉर्ड होने के बाद उसका घोषणा हुआ है। अगर अभी भी अकॉर्ड अधूरा है और इस सिर्फ एक फ्रेमवर्क बना है, फुल एग्रीमेंट नहीं हुआ है, तो इसको लेकर घोषणा देना, ये ढोल बजाने वाला जो हिसाब सरकार का है, इससे सरकार को दूर रहना चाहिए था।
पूर्वोत्तर मामलों के जानकार सुबीर भौमिक से बात कर रहे थे निखिल रंजन। सावन का महीना शुरू हो गया है और साथ ही शुरू हो गई है कांवड़ यात्रा। भगवा कपड़ों में सजे कांवड़िए पैदल चलकर लंबा सफर तय करते हैं और फिर जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। इनकी यात्रा का मार्ग मुख्य सड़क होने के कारण हादसों की आशंका के साथ ही परेशानी और सुरक्षा का मसला भी रहता है। सुरक्षा की दृष्टि से भारत सरकार ने इस बार की यात्रा के लिए कई नए नियम बनाए हैं और इस बार क्या इंतजाम किए गए हैं इस बारे में बता रहे हैं अमित भास्कर।
अगस्त का महीना शुरू हो चुका है और इसी के साथ श्रावण मास का आगमन हो गया है। सड़कों पर भगवा वस्त्र पहने कंधे पर कांवड़ सजाए कांवड़िए दिखने शुरू हो गए हैं। सड़क के किनारे खाने पीने और नहाने धोने की व्यवस्था के साथ साथ बड़े बड़े टेंट दिखने लगे हैं। ये सारी तैयारी कांवड़ यात्रा पर निकले शिव भक्तों के लंबी यात्रा में उन्हें आराम देने की है। दिल्ली के संकट मोचन धाम के महंत ओम प्रकाश गिरी,
कांवड़ का जल लेके आते हैं मुख्यतः गोमुख से, गंगोत्री से, हरिद्वार से लेके आते हैं जल। इस बार जो जल है वो 12 तारीख को निर्धारित किया है, आती है 12 तारीख को, 12 तारीख तक लेके अपने अपने क्षेत्रों के शिवलिंग में चलाता है। बैजनाथ धाम में भी जाते हैं लोग जल चलाने के लिए, लेकिन सामान्यतः लोग क्या करते हैं, अधिकांश संख्या में लोग अपने अपने घरों के समीप जो मंदिर होते हैं उसमें जल चलाते हैं।
यह यात्रा कांवड़ियों के लिए अपने आप में आस्था के साथ साथ हिम्मत की भी परीक्षा होती है। राजस्थान के लालपुरी से हरकेश हरिद्वार से गंगा जल लेकर चले हैं।
कांवड़ यात्रा का महत्व यही है कि हम घर में अपने काम धाम में प्रभु का नाम लेने के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो अब ये 15 दिनों के लिए सुबह से शाम तक प्रभु का नाम ही निकलता है, सिर्फ बोले ही बोले होती है मुख से और किसी का नाम नहीं आता है, तो ये बड़े उससे मिलता है मौका कि 15 दिनों के लिए सुबह से शाम तक प्रभु के नाम में ही लीन रहो।
जिन रास्तों से कांवड़िए गुजरते हैं वहाँ इनके सुविधा के लिए खाने पीने और नहाने धोने की व्यवस्था राज्य सरकार और स्थानीय संस्थाएं मिलकर करती हैं। दिल्ली के शास्त्री पार्क में श्यामगिरी मठ के महंत श्री रामगिरी सालों से ऐसी व्यवस्था करते आए हैं।
दवाइयाँ फ्री, गद्दे, बिस्तर और एम्बुलेंस और लेडीजों के लिए अलग अलग प्रबंध, अलग अलग सुविधाएं, लेडीजों के नहाने के अलग, सोने के अलग, सब कुछ इस तरह जो है, हर तरह की दवाइयाँ, देसी जड़ी बूटियाँ भी डॉक्टर बैठे हैं, इंग्लिश भी बैठे हैं।
दिल्ली के रास्ते से होकर जाने वाले कांवड़ियों के लिए दिल्ली सरकार ऐसी ही संस्थाओं के साथ मिलकर अलग से व्यवस्था करती है। ये यात्रा तो भक्तों के लिए आस्था का संगम होती है, लेकिन
स्थानीय पुलिस के लिए ये एक चुनौती भरा काम होता है। बाहरी दिल्ली के डीसीपी विक्रमजीत सिंह,
कांवड़ियों का अरेंजमेंट है, इसके अंदर हमारा जो फोकस रहेगा वो जो शिविर लगाएंगे उस पे रहेगा, और जो सड़क के साथ साथ जो कांवड़िया जो चलेंगे कांवड़ लेके उनकी सुरक्षा के लिए रहेगा कि कोई किसी प्रकार का ट्रैफिक के साथ कोई बाधा ना हो ट्रैफिक को, और ना ही इनको कोई ट्रैफिक के चलते कोई इनके साथ कोई दुर्घटना घट जाए।
इन सबके अलावा इस बार के यात्रा के नियमों में भी बदलाव किए गए हैं।
सुरक्षा के लिए ही हम ये इन्फोर्स करते हैं, हम चाहते हैं कि वो हेलमेट पहने ताकि उनकी जान को कोई खतरा ना हो और से उनकी सेफ्टी भी बनी रहे, ट्रैफिक नियमों का भी पालन हो। जहाँ तक कोई किसी प्रकार का वेपन या कोई अस्त्र शस्त्र ले जाने की बात है, वो प्रतिबंध लगा हुआ है, वो नहीं ले जा सकते हैं। म्यूजिक सिस्टम जो डीजे वगैरह बजाते हैं ये, तो उसकी वॉल्यूम नियंत्रण में रखें। जहाँ पे हरिद्वार में जैसे ये जाएंगे तो वहाँ पर भी ये इस प्रकार की सभी वस्तुओं को रख लिया जाता है, इसलिए इनके लिए यही संदेश है कि ये यहाँ से लेके ही ना जाएं।
हालांकि इन नए नियमों की जानकारी कई आयोजकों को नहीं है। श्यामगिरी मठ के महंत श्री रामगिरी,
इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, हमें कोई फॉर्मेशन नहीं मिली, ना किसी ने कोई हमको संदेश दिया।
इसके अलावा अलवर के मनोहर सिंह और हरे सिंह दिल्ली की यातायात पुलिस से खासे नाराज दिखते हैं।
इस रास्ते में थोड़ा परेशानी है, दिल्ली में थोड़ी तकलीफ है कि क्योंकि पुलिस वाले थोड़ा सा सहयोग नहीं,
दिल्ली का प्रशासन सही नहीं है, दिल्ली में ज्यादा दिक्कत होती है, आने जाने में रोकते नहीं किसी को भी, चौराहे पर पुलिस वाले, ट्रैफिक में ज्यादा दिक्कत होती है।
भक्तों की आस्था, सरकार की व्यवस्था, पुलिस की सतर्कता और यात्रा के मार्ग में स्थानीय लोगों की सेवा भाव की आतुरता, ये सभी भाव मिलकर इस पर्व को महान बनाते हैं।
आपको अमित भास्कर की ये विशेष रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर लिखिएगा। और अब समय है समाचार पत्रों की समीक्षा का, और सभी अखबारों पर नज़र डाल चुके हैं स्टूडियो में समीर आत्मज मिश्र। समीर, आज क्या कहते हैं आज के अखबार?
आज के अखबारों में भी संसद की ही चर्चा है, ज़्यादातर अखबारों ने अपनी प्रमुख खबर उसी को बना रखा है। जनसत्ता लिखता है, पाकिस्तान से आए थे दोनों आतंकवादी, उधमपुर आतंकवादी हमले पर संसद में गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा। और इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो उसमें जो चरमपंथी को बीएसएफ के जवानों पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में लिखा हुआ है कि अरेस्टेड टेररिस्ट ट्रेंड इन सेम लश्कर कैंप एज अजमल, पुश्ड अक्रॉस एलओसी इन अप्रैल। इस खबर की चर्चा भी अखबारों में प्रमुखता से है। दैनिक जागरण ने भी इसी को लीड बनाया है। पाक ने नकारा, पिता ने माना, नापाक झूठ, नावेद को अपना नागरिक मानने से किया इंकार। दैनिक जागरण की एक और खबर है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को मारने की धमकी, याकूब की फांसी पर रोक की याचिका की थी रद्द, न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा के बंगले पर भेजी गई चिट्ठी, स्पेशल सेल क्राइम ब्रांच और सुरक्षा एजेंसियों ने शुरू की जांच। और सच्चिदानंद निरंजनी अखाड़ा से निष्कासित, ये सच्चिदानंद वही हैं जिन काफ़ी विवादित रहे। और दैनिक जागरण की यह खबर है, डिस्कोथेक बार संचालक और रियल एस्टेट कारोबारी सच्चिदानंद गिरी उर्फ सचिन दत्ता निरंजनी अखाड़ा से निष्कासित कर दिए गए हैं। अब वो न तो निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर रहे और न ही सन्यासी। 31 जुलाई को हुआ था इनका भव्य पट्टाभिषेक। और द इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर है कि पटना हाईकोर्ट जज अटैक्स चीफ स्किप्स हिज फेयरवेल, और अपने जो इनके मुख्य न्यायाधीश हैं पटना हाईकोर्ट के, उनके जो विदाई पार्टी थी उसमें नहीं गए, और उनको मुगल बादशाह कहा है, उनकी आलोचना करते हुए पटना हाईकोर्ट के एक जज हैं। इस खबर को इंडियन एक्सप्रेस ने प्रमुखता से जगह दी है। द हिंदू की एक खबर का जिक्र करना चाहेंगे जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और MP हैं, वो आम आदमी पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आशुतोष। द हिंदू ने खबर तस्वीरों के साथ छापी है, लिखा है अमीड दैट फ्यूल्ड स्पेकुलेशन। और शत्रुघ्न सिन्हा पिछले कुछ दिनों से नीतीश कुमार की भी और जनता दल यूनाइटेड के नेता बिहार के मुख्यमंत्री उनकी भी तारीफ करते रहे हैं, तो इसको लेकर के काफ़ी कयास लगाए गए। कंट्रोल रूम करें ने चौकसी, थाना करें ने काम, ये जनसत्ता की खबर है। अखबार लिखता है कि लुटेरे का भेष धर घूमते रहे कानपुर के SSP, किसी पुलिसकर्मी ने नहीं की जांच।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समाचार पत्रों की समीक्षा के लिए। और अब कार्यक्रम का अंत करने से पहले सुन लेते हैं मुख्य समाचार।
BBC समाचार। जम्मू कश्मीर में उधमपुर ज़िले के बसंतगढ़ इलाके में एक पुलिस चौकी पर संदिग्ध चरमपंथी हमला हुआ है जिसमें 3 SPO घायल हो गए हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक शक्तिशाली कार बम धमाके में कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है और 100 के लगभग लोग घायल हो गए हैं।
फ्रांस हिंद महासागर में री यूनियन द्वीप के पास एक खोजी जहाज हेलीकॉप्टर और कुछ नामे भेज रहा है ताकि मलेशिया के लापता विमान MH370 के मलबों का पता लगाया जा सके। पाकिस्तानी सेना का कहना है कि देश के उत्तर पश्चिम इलाके में उसका एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है जिसमें कम से कम 12 लोग मारे गए हैं। अमरीका में रिपब्लिकन पार्टी के 10 प्रमुख संभावित उम्मीदवार अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए पहली बहस की तैयारी कर रहे हैं। BBC समाचार।
मुख्य समाचार सुना रहे थे समीर आत्मज मिश्र। इसी के साथ नमस्कार भारत में आज बस इतना ही। आपसे विश्व भारती में 8 बजे फिर होगी मुलाकात ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक तकनीकी सहयोगी हेमंत कुशवाहा के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।